मुस्कान पंजाबी बाग में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद जो भगवान का आश्रय, जिसमें भगवान का शरण लेना है, भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, उसके चौथे अध्याय में कंस के अत्याचार का नाम है अध्याय का, उसका 20वां श्लोक आज हम पाठ करेंगे। ये कंस बोल रहा है और देवकी और वसुदेव को बोल रहा है। कब बोल रहा है? जब 8वां गर्भ भगवान वसुदेव कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वासुदेव को प्रेरणा दी कि मेरे को मथुरा ले चलो, मथुरा से गोकुल ले चलो और वहां यशोदा की जो कन्या है उसको वापस ले आओ, तो वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, अपने वचन को कृष्ण के ऊपर निछावर कर दिया। उसने कहा था मैं अपने सब बच्चे आपको दूंगा, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन किया और कृष्ण को वहां छोड़ के वहां से योग माया जो अनुजा थी उसको ले आए। और वो जब रोई तो संतरियों ने कंस को बुलाया, कंस आया, कंस ने देवकी के हाथ से उसको जबरदस्ती लिया। देवकी ने बहुत प्रार्थना की कि इसको मत काम मारो, ये कन्या है। तो वो कन्या कंस से हाथ से निकल के आकाश में अष्ट भुजाओं में देवी के रूप में कंस को कहा, मूर्ख तुझको मारने वाला प्रकट हो चुका है। तो कंस उस देवी का वचन सुन के उसके मन में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और वो फिर वसुदेव और देवकी को प्रार्थना करने लगा और बहुत आत्मज्ञान का उपदेश देने लगा। तो कंस, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंस जैसे क्रूरों को भी आत्मज्ञान का पता था, आजकल के बड़े बड़े नेताओं को भी आत्मा और शरीर के अंदर अंतर इसका पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि कंस भी ऐसी आत्मज्ञान की बात करता है, हिरण्यकशिपु भी आत्मज्ञान की बात करता है, लेकिन ये असुरी वेदांत है। ये कहते हैं शरीर नाश हो जाता है, आत्मा अमर है, लेकिन अपने शरीर को सदा रखना चाहते हैं। ये जो कहते हैं वो नहीं करते। तो आज श्लोक कंस बोल रहा है, वसुदेव और देवकी को बोल रहा है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। यथाए नेवम विदो भेदो यतात्म विप्रयय देह योग वियोगोच संक्षृति न निवर्तते यथा एनेवं विदो भेदो यतात्मा विप्रययः देह योग वियोगौ च संक्षृति न निवर्तते यथा एनं विदो भेदो यतात्म विप्रययः देह योग वियोगौ च संक्षृति न निवर्तते। यथा एनेवं विदो योगो यतात्म विप्रययः देह योग वियोग च संक्षृति न निवर्तते यथा नेवेदं विदो भेदो यतात्मा विपर्ययः देह योग वियोग च संक्षृति न निवर्तते। माता जी, यथा एनेवं विदो भेदो यदात्मा विपर्ययः देहे योगो वियोगो च संक्षृते न निवर्तते यथा एनेवं विदो भेदो देह योग वियोग च संक्षते न निवर्तते यथा एनेवं विदो भेदो यत आत्म विपर्ययः देयोगो वियोगो च संक्षते न निवर्तते यथा एन एवं। ये जो शब्द है, ये जो इससे पहले श्लोक हुआ है, इससे आगे श्लोक हुआ है, उसको इशारा कर रहा है, जिसमें कंस ने कहा था कि मिट्टी से बना हुआ चाहे कोई मटका हो, चाहे कोई गुड़िया हो, वो जब टूट जाती है तो वापस मिट्टी बन जाती है। तो मिट्टी ही रहती है, वो शरीर उसका शक्ल बदलती है और फिर ठीक हो जाती है, वापस मिट्टी मिल जाती है, चाहे उसका कितने भी रूप बना लो। तो यहां कहते हैं जैसे विदो भेदो, जो इस भेद को नहीं जानता है, विदो का मतलब जानना, जो इस भेद को नहीं जानता है, यथा एनम विदो भेदो, जो इस भेद को नहीं जानता है, बोला ये भेद जो मिट्टी, मिट्टी तो मिट्टी है, उसका दीप बना लो, उसकी गुड़िया बना लो, उसका मटका बना लो, उसके नाम अलग है, बस टूट जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा, तो मिट्टी ही रहेगी। तो ऐसे यत इस वो नहीं जानते हैं, इसलिए आत्मा विपर्यय, आत्मा का मतलब, आत्मा विपर्यय मतलब उसके विपरीत शरीर। तो जो शरीर और आत्मा को अलग नहीं जानते हैं, जो शरीर को और आत्मा को अलग नहीं जानते हैं, उनको क्या होता है, देह योगो वियोगो च। जब शरीर मिलते हैं, योगो का मतलब मिलना, वियोगो का मतलब उनसे बिछड़ना, तो जब मिलते हैं तो सुख मिलता है और जब बिछड़ते हैं तो दुख मिलता है। शरीर के मिलने से सुख मिलता है, शरीर के बिछड़ने से दुख मिलता है। अगर जो नहीं जानते हैं और ऐसे दुख सुख का जो अनुभव करते हैं, उनकी संसृति, संसृति मतलब जन्म मृत्यु, उनका आवागमन, उनका आना जाना न निवर्तते, सतत समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब यह है, जो देह को, शरीर को और आत्मा को अलग नहीं जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, वो लोग शरीरों के मिलने के ऊपर खुश होता है, शरीरों के बिछड़ने के ऊपर दुखी होते हैं, तो उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में चलना पड़ता है, उससे वो मुक्त नहीं हो सकते। ये कंस का बहुत अच्छा सिद्धांत है, और अच्छा सिद्धांत कंस ने बताया है। तो श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद, जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वो देह आत्म बुद्धि की प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। जो उनके स्थिति को नहीं जानता है, का मतलब स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, समाप्त होने वाला, परिवर्तन हो, शरीर जन्म लिया है, बढ़ेगा, अपने जैसे और पैदा करेगा, फिर टूटेगा, फिर समाप्त हो जाएगा, ये देह का धर्म है। आत्मा का क्या धर्म है, नित्य है, शाश्वत है, भगवान का दास है। ये जो नहीं जानता है, और जो देह आत्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि मतलब देह को ही आत्मा मानता है, देह आत्म बुद्धि का मतलब देह का अध्यास, देह को ही आत्मा मानता है, उसमें अनुरक्त रहता है, मतलब उसी में ही रमा रहता है। फलस्वरूप उसका फल क्या है, शरीर तथा उनके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वो अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। अब श्री प्रभुपाद ने संयोग वियोग में कहा कि परिवार का संयोग वियोग होता है, और फिर समाज का संयोग वियोग होता है, फिर राष्ट्र का संयोग वियोग होता है। भाई हम अपने देश से बाहर जाते हैं, बोला हम अपने देश से बाहर है, अपने घर से बाहर है, घर में आ गए तो खुश हो गए, तो ये सब देह से जुड़ा हुआ है, सब शरीर देह से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ का हूँ तो मेरी देह यहाँ की हो गई, तो मैं भाई दिल्ली वाला हूँ, मैं वृंदावन वाला हूँ, कि मैं भारत वाला हूँ, तो ये सब देह अध्यास है। तो उनको जब तक ऐसा बना रहता है, इसका मतलब जब तक आदमी अपने आप को शरीर ही मानता है और शरीर के संबंध से ही अपना सारा व्यवहार करता है, तब तक वो भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त नहीं, तो मुक्त हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्या लिखा है श्रीमद् भागवत में, प्रभुपाद जी किस चीज को ले रहे हैं तात्पर्य में, धर्म क्या है, भाई आत्मा का धर्म क्या है, शरीर का धर्म क्या है, उनकी अपनी स्थिति क्या है। तो आत्मा के धर्म की बात कहने के लिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत के दूसरे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में कहा है, सवै पुंछाम परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसीदति। असल में ये है सब लोगों के लिए भले का साधन। सबका श्रेय किसमें है, आत्यंतिक श्रेय सबका कैसे हो? बोला भगवान जो इंद्रियों से परे है उसकी भक्ति करे। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए कि ये भक्ति करते हैं हमको ये फल मिलेगा, ऐसा कोई उसका हेतु नहीं होना चाहिए। और वो भक्ति निरंतर चलती रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई विविधान नहीं पड़ना चाहिए। ये है आत्मा का धर्म। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं धर्म का अर्थ है काम में लगना, धर्म का अर्थ है अपने जो स्वभाव है उस काम में लग जाना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निरोध लगा रहता है, भगवान की सेवा में कैसा लगा रहता है? अविराम, कोई विराम नहीं, छुट्टी नहीं, राम कामा नहीं विश्रामा, भगवान की सेवा में कभी विश्राम होता ही नहीं। आप देखो बाहर दुनिया के काम में रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन मंदिर के अंदर रविवार को काम बढ़ जाता है, आम दिनों से ज्यादा काम होता है। रविवार की छुट्टी मंदिर में नहीं होती है, भगवान के सेवा में छुट्टी नहीं होती है। यहां तो उस दिन हमारे को चार पांच 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 सत्संग करने पड़ते हैं। तो ये भक्ति में विराम नहीं होता है, और एक विराम नहीं होता है, और दूसरा निर्विरोध, उसके अंदर कोई अवरोध नहीं होता। अवरोध का मतलब रुकावट नहीं, ब्रेकर नहीं है भक्ति के रास्ते में। भक्ति का रास्ता कैसा है? बोला ये राजमार्ग है जिसके अंदर कोई ब्रेकर नहीं है, ब्रेक मारने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करके दौड़ के दौड़ते जाओगे तो सीधे भगवान के चरणों में गिरोगे, कहीं और नहीं गिरोगे। ये भक्ति का मार्ग जो है ये राजमार्ग है। और बाकी मार्ग कैसे हैं? बाकी मार्ग है जो पशु जंगल में चलते हैं ना, पगडंडी होती है, वो एक से दूसरे दूसरे से, उसी के अंदर भूल भले ही भूलते रहो कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। ये जड़ भरत ने महाराज रघुगुण को कहा कि जंगल के अंदर पशुओं वाली पगडंडियां हैं जो लोगों ने धर्म बनाए, उसके ऊपर चलोगे तो एक से दूसरा दूसरे तीसरे से अंदर घूमते रहोगे, बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ये संसार ऐसा है जिसके अंदर भटकते रहोगे जब तक राजमार्ग नहीं मिला। भक्ति राजमार्ग है, आंखें बंद करके भागते रहो तो भी भगवान की गोद में जाके गिरोगे, कहीं और गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहां ये है यतो भक्ति अधोक्षजे, ये इंद्रियों से परे भगवान की भक्ति है, वो अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इसका मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा है, इसका मतलब वो अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, तो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा है, इसका मतलब वो आत्मा के अपने स्वरूप को जानता है। इसका समझा मतलब है, उसको समझना चाहिए। क्या समझा जाता है उसको? कि वो आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त है, वो अपने आत्मा में स्थित है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वो सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है। कल कहा था, कल के श्लोक में आया था, चेतना चरित मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो ब्रह्मभूत के स्तर के ऊपर है। इसका मतलब वो जो उसका अपना स्वरूप है उसमें स्थित है। भगवान की, हमारा स्वरूप है ही भगवान की सेवा करना। इसको कहते हैं भगवान भोगता है, हम उसके भोग्य हैं। तो जो ये जानता है कि भगवान की ही सेवा में हमारा सुख है, वो अपने अस्तित्व में है। जो समझता है भगवान से अलग मैं भोगता बन जाऊं, जो भोगता बनने का विचार करता है वो भुगत जाता है संसार में, वो सुखी कभी नहीं हो सकता है। असुरों में और भक्तों में अंतर क्या होता है? शुरू में असुरों में अंतर क्या होता है? असुर भगवान से अलग भोग करना चाहते हैं और सुर भगवान के सहयोग से भोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को आनंद नहीं लेना है, हमको सुख नहीं लेना, ऐसा नहीं, हमारा स्वरूप है। ये आनंद लेना हमारा स्वरूप है, लेकिन भगवान से अलग नहीं, भगवान के साथ कोऑपरेशन, भगवान के सहयोग से, प्रतिद्वंदी बनकर नहीं। एक होता है कि कॉम्पिटिशन करना, भगवान से कॉम्पिटिशन नहीं, कोऑपरेशन। भक्ति में कोऑपरेशन है और अन्य मार्ग में प्रायः कॉम्पिटिशन है, क्योंकि उसमें भोग की इच्छा बनी रहती है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत, चाहे कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, उनकी इच्छा बनी रहती है कि कुछ हमको मिलेगा। तो जब इच्छा बनी रहती है तो अलग भगवान से भोग करने की भावना रहती है। कृष्ण भक्त निष्काम निष्काम अतएव शांत, भगवान के भक्त को कोई कामना नहीं है, भगवान की सेवा ही उसका एक ही उद्देश्य है, इसलिए उसको कोई भय नहीं है और उसको कोई अशांति नहीं है। अन्यथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे भौतिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। या तो आनंद लो भगवान की सेवा करके, नहीं तो संसार में कष्ट उठाओ। संसार में सबको कष्ट भोगने पड़ते हैं, तीन कष्ट तो सब जानते ही हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। ये कष्ट सबको भोगने पड़ते हैं, कोई इससे छूट नहीं सकता है। और ये सारे कष्ट भागवत में के मेरे ख्याल में दूसरे श्लोक में लिखा है। मंगलाचरण का दूसरा श्लोक क्या है? धर्म कय प्रोजत कयुत निर्मतनाशनाम वेद्यम वास्तव तापत्रिय उन्मूलनम, तीनों प्रकार के दुख को जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। ये क्या भागवत के श्रवण वर्णन से, भागवत धर्म का पालन करने से तीनों दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर प्रश्न प्रभुपाद जी प्रश्न आज उठाएंगे, तो क्या भक्तों को दुख नहीं होता है? क्या क्या भक्तों को रोग नहीं होता है, बीमार नहीं होते हैं? क्या होते हैं, लेकिन उनको बीमार होने के बाद भी वो बीमारी से दुखी नहीं होते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अन्यथा देहात्मी बुद्धि के कारण उसे भौतिक कष्ट भोगना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं, ये कहां है श्लोक? ये भगवत गीता के 13वें अध्याय का श्लोक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान के लक्षणों में है। तो आदमी जब ये दुनिया में देखता है तो अनुभव करता है कि यहां दुख है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? वहां उसको आचार्य का शरण लेना चाहिए, वहां ज्ञान का लक्षण है। तो आचार्य क्या सिखाएगा? अविचारेण भक्ति योगेण, फिर भक्ति के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए तो इन दुखों से मुक्त हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करेगा तो वो अज्ञानी माना जाएगा, उसको कोई विद्या नहीं है, वो चाहे कितना भी दुनिया में पढ़ा लिखा हो लेकिन अज्ञानी माना जाएगा। तो ज्ञानी कोई बनना चाहता है तो उसके ज्ञान के जहां 18 लक्षण है, 20 लक्षण है, उसमें दो मुख्य हैं। देखो पहले तो मुख्य है दुनिया में दुख को समझना, और उसके बाद उसके निवारण करने का कोई रास्ता ढूंढ के निकालना। तो पहले जन्म मृत्यु के दुख का पता लगे तो फिर आचार्य का शरण लेके भक्ति करके उससे मुक्त होने का रास्ता पता लगे, तो ये तब तो कह जाएगा कि ये जानता है। और ये नहीं करता है इसका मतलब वो अनजान है, अज्ञानी है, विद्या नहीं है। और जिसको विद्या नहीं है उसको इच्छाएं भौतिक उत्पन्न होंगी, और भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होंगी तो उससे पाप होगा, और पाप का फल उसको भोगना पड़ेगा। इसको कहते हैं पाप की परंपरा, अविद्या, भौतिक इच्छाएं, पाप करने की प्रवृत्ति, और पाप का फल दुख। भाई दुख कहां से आता है? पाप से आता है। इसलिए भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सब मिलकर गाएंगे तो पाप सब नाश हो जाएगा। बोला पाप का फल कैसे नाश होगा? पाप का फल तो दुख है। हरि प्रणामो, भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे, हरि को प्रणाम दुख शमनम, तो आपके दुख भी चले जाएंगे। तो भगवान के नाम का कीर्तन करने से पाप नाश होंगे, भगवान को प्रणाम करने से दुख नाश हो जाएंगे। तो ये भागवत का पूर्ण आहुति का श्लोक है। दो ही साधन बताए हैं, नाम संकीर्तन करो, भगवान को प्रणाम करो, पाप भी गया दुख भी गया, और पाप दुख गया तो फिर सुखी हो गए, और क्या है? फिर तो हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, आनंदमय जीवन हमारा हो जाएगा। तो ये दो काम तो करने ही चाहिए, संकीर्तन और प्रणाम भगवान को। ये भागवत की पूर्ण आहुति का श्लोक है। ये दुख है, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक है, यतो भक्ति अधोक्षजे, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते। कोई ये तर्क कर सकता है कि 24 घंटे आध्यात्मिक में लगा रहने वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो यह है कि वो न तो कष्ट भोग रहा होता है और न रोगी होता है, अन्यथा वो 24 घंटे आध्यात्मिक कार्य में कैसे लगा रह सकता है। प्रभुपाद जी उत्तर क्या देते हैं? पहले आप प्रश्न क्या कर रहे हैं, अरे तुम सारा दिन भगवान की सेवा में लगते हो, 24 घंटे सेवा में लगे हो, फिर भी तुम्हारे को बीमारी है, तुम्हारे को दुख है। तो प्रभुपाद तर्क क्या दे रहे हैं कि 24 घंटे सेवा में लगता है तो फिर दुख कैसे हो सकता है? उसको दुख होगा तो 24 घंटे सेवा में कैसे लगेगा? इसका मतलब दुख नहीं है उसको, इसका मतलब दुख का उसको तो पता नहीं लगता है। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना में क्या है, दुख भक्त को आता है तो भक्त क्या कहता है, भगवान मेरे कर्मों के कारण आपने कृपा करके थोड़ा कष्ट दिया है, मैं तो बड़ा पापी हूं, मुझे और ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, आपने बड़ी दया की है मेरे ऊपर। और भक्त समझता है कि ये कष्ट मेरी शुद्धि करेगा, मैं अपने कर्मों का यही भुगतान कर लूं तो फिर भगवान का प्रेम से सेवा करूं। तो उसको इसको कहते हैं कि अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा लेकिन सहने की शक्ति आ जाएगी, उसमें फिर आपको दुख दुख लगेगा नहीं। इसके लिए कहते हैं दुख सुख सपना, सुख सपना, भाई सपना सदा रहेगा क्या? हाँ नींद में है तब रहेगा, वो जाग गए तो खत्म हो गया। सुख सपना, दुख बुदबुदा, भाई बुदबुदा कब तक रहेगा, भाई थोड़ी देर में ये फैन हो तो खत्म हो जाएगी। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, ये आने वाले दोनों मेहमान है, आए हैं चले जाएंगे, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान, भगवान की तरफ से आए हैं, हमारे कर्मों के हैं, तो हमको दोनों को राम राम करना चाहिए। कह रहा है बैठो बैठो, नहीं बैठेंगे, बोले जाएंगे, वो रुकेंगे ही नहीं। एक महात्मा के पास कोई गया, क्या बोला महाराज कोई ऐसा मंत्र दो, बोला ये आपको मंत्र लिख देता हूं, ये कागज बंद करके रखना, जब कोई बहुत कष्ट की घड़ी आए तब इसको खोल के पढ़ना। कष्ट आया, महात्मा का कागज खोला, उसमें लिखा था ये भी गुजर जाएगा, कुछ चिंता नहीं करो, ये भी गुजर जाएगा, ये समय भी बीत जाए और कुछ नहीं है, कि ये कोई रहने वाला नहीं है, यहां ये दोनों मेहमान है, इसलिए आदर दे दो, चाओ आओ आओ बैठो, आज दुख जी मेहरान मेहरमान मेहरबानी करके बैठो, नहीं बैठेगा भाग जाएगा, उसको रहना ही नहीं है। तो ये, और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी की शिक्षा से, उदाहरणार्थ कभी कभी गंगा के जल के ऊपर गंदा फैन या कूड़ा करकट तैरता दिखता है, यह नीरधर्म कहलाता है। नीरधर्म का मतलब पानी है, तो वैसे भी पानी को इंद्र ने, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथा हिस्सा पाप पानी ने ले लिया, तो उसमें फैन तो होना ही है, उसमें फैन तो होना ही है, आज नहीं कल नहीं दूसरे दिन तो हो ही जाएगा। तो अगर फैन पानी में है तो यह नीर का धर्म है। तो गंगा, प्रभुपा जी लिखते हैं गंगा में कभी कचरा भी होता है तो जो गंगा की महिमा को जानते हैं वो हाथ से कचरे को हटा के उसके अंदर डुबकी लगा के गंगा के स्नान का लाभ लेते। तो गंगा गंदी नहीं होती है, कितने भी गंदे नाले जाएं तो गंदे नाले गंगा में जाने से गंगा हो जाते हैं, गंगा गंदा नाला नहीं होती। कभी हमसे लोग पूछते थे आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, लोग जो आपको दान देते हैं उनका काला धन है, ऐसे पूछते हैं लोग, काला धन कटा लेते हो? हम देते हैं भाई गंगा के अंदर गंदा नाला आता है तो गंगा बनता है कि नाला बनता है, उनका काला धन भगवान की सेवा में हो जाएगा तो आज सफेद हो जाएगा और वो भी चमक रहेगा, चमक जाएगा, इसमें खराबी क्या है? भाई भगवान की सेवा में लगेगा तो वो तो गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा, उसमें क्या है? काला धन भगवान को तो कुछ खराब नहीं कर सकता है, हमको खराब कर सकता है, हम अगर उसको भोग करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। भगवान को, एक वेश्या आई सोने का हार लेके भगवान को देने के लिए, तो पुजारी कोई नष्टी ब्रह्मचारी था, वेश्या को देख के आंखें बंद, जाओ जाओ जाओ, तो भगवान ने पीछे थप्पड़ मारी पुजारी को, बोला तेरे को दे रही है मेरे को दे रही है, बोला किसको दे रही है, तेरे को मेरे को, अरे ला मेरे कल्ले में डाल, अरे वो मुझे मेरी सेवा करनी है, तू लेगा तो नरक में जाएगा, मैं लूंगा तो उसको वो भगवान के धाम जाएगी। तो ये है कि भगवान ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, हम लेंगे तो दुख भोगेंगे, भगवान को क्या, भगवान को कोई पाप लगेगा क्या? तो वो तो और पवित्र हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे गंगा में फेन होती है, गंदा कूड़ा ककड़ा दिखता है, तैरता हुआ दिखता है, ये नीर धर्म कहलाता है, किंतु जो गंगा में स्नान करने आता है वो जल में तैरती हुई फेन तथा गंदगी के परवाह नहीं करता, वो इन गंदगियों का हाथ से हटाकर गंगा में स्नान करके स्नान का लाभ उठाता है। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति फेन तथा कूड़ा करकट या अन्य ऊपरी गंदगी बातों का अप्रभावित रहते हैं, इसकी पुष्टि शिला रूप गोस्वामी ने की है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखलस्व अवस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। कल भी ये श्लोक आया था, आज फिर ये श्लोक आया है। इसका मतलब जो शरीर से वाणी से मन से भगवान की सेवा में लगा है, कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति का मतलब है को कोई बुरी स्थिति में हो तो भी वो जीवन मुक्त समझना चाहिए। कैसा काम कर रहा है वो नहीं देखना है, काम किसके लिए कर रहा है ये देखना है। कल हमने आपको उदाहरण दिया था, अर्जुन क्या काम कर रहा था, मार रहा था आदमी को, भले आदमी को मार रहा था, भीष्म को मार रहा था, द्रोण को मार रहा था, लेकिन भगवान का महान भक्त कहलाता है, भगवत गीता के परंपरा में प्रतिष्ठित है। किसके लिए काम कर रहा था ये देखना है कि काम भगवान के लिए कर रहा था, काम किसके लिए करता है ये देखना है। जैसे एक महात्मा के पास कोई गया कि महाराज कोई उपदेश दो, बोला शेर बनो जीवन में, कुत्ता मत बनना। बोला महाराज इसका अर्थ क्या? बोला शेर को जो कोई मारता है ना, तो जो चीज मारता है उसको नहीं देखता है, मारने वाले को देखता है। कुत्ता क्या करता है, आप कुत्ते को पत्थर मारो, कुत्ता पत्थर की तरफ भागेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। तो कुत्ता बनने का मतलब संसार में दुख आएगा तो उससे रोएंगे, सुख आएगा तो उससे खुश होंगे, लेकिन जो भेजता है उसकी तरफ नजर नहीं जाएगी। शेर का मतलब भेज कौन रहा है उसको देखना है। आप जीवन में शेर बनो मतलब भगवान के ऊपर नजर रखो, जो कुछ आ रहा है भगवान की तरफ से आए। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने कहा, भारत को, भारत की और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, 71 की बात है, बोला अगर कोई बम पाकिस्तान भेजे तो, प्रभुपाद जी मैं देखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण बम के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान उनको नहीं अनुमति देगा तो वो कैसे फेंकेंगे, अगर फेंकेंगे भगवान भेज रहा है तो आने दीजिए। तो ये दृष्टि जो है कैसी भी अवस्था में हो, अब प्रभुपाद जी मैं कल कल कहा था प्रचार करने गया हिप्पियों के बीच में, आज नंगे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, नशे में धुत है, उन अवस्था में भी जाके भगवान का कीर्तन किया, तो ऐसी अवस्था में भी ऐसे जीवन मुक्त आदमी, उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभुपाद जी वहां गए तो उन लोगों को भक्त बनाया, वहां जाके वैसे नहीं बन गए। हम क्या है, वहां जाते हैं उन जैसे जाते वैसे बन जाते, हम वैसे बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो तो उनको सुधार दिया। तो ये जीवन मुक्त जो व्यक्ति है उनको बाहर की कैसी भी अवस्था था उसका प्रभाव, उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्त कभी भी नरक में भी प्रचार करने जाने में डरते नहीं है, क्योंकि नरक में जाएंगे प्रचार करने जाने हमें क्या कौन सी आपत्ति पड़ेगी। नरक में प्रचार करने में भी उनको भय नहीं लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई जेल में प्रचार करने के लिए हम जाते, जेल में प्रचार करने में डर नहीं लगता, क्या करेंगे जेल में प्रचार करने से। जहां भी जाके प्रचार करना है प्रचार करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है जहां भी करना हो, तो वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है। अतः गुरु को, अब देखो अतः प्रभुपाद जी इसके बाद कहते हैं कि जैसे गंगा के पानी के ऊपर कचरा होता है तो उसको बुरा नहीं कहते हैं, ऐसे ही साधु संत महात्मा कभी बाहर से दिखते ऐसे हैं, सुंदर शरीर भी नहीं होता है, कहीं देश कैसे से आ गए हैं, अफ्रीका से आ गए ऐसे समझ लो, रंग भी अच्छा नहीं है, शरीर में विकलांत भी है, उसको नहीं देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो पद्म पुराण से ये शरीर देखते हैं, तो गुरु को भी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरुषु नरमति नारकी सह, ये तीन चीजें हैं, क्या क्या तीन चीजें हैं, गुरु को सामान्य मानव नहीं समझना चाहिए और हाँ क्या शालिग्राम को पत्थर नहीं समझना चाहिए, यानी भगवान की मूर्ति को पत्थर नहीं समझना चाहिए, और वैष्णो में जाति का भेद नहीं करना चाहिए। वैष्णो कौन से जाति है, नहीं भगवान का भक्त है तो भक्त है, उसके पूर्व जन्म में क्या था ये नहीं देखना चाहिए। अपिचेत दुराचारो भजते माम, भगवान ने कहा दुराचारी भी है तो मेरा भजन करता है तो समझ लो साधु हो जाएगा, तो भजन करने लग गया तो फिर उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। तो ये नारकी वो ये इसका मतलब गंगा के फैन की वजह से उसको छोड़ते नहीं है, तो ये बाहर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बाहर की दृष्टि से जैसे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, वृत्रासुर, ये असुर दिखते थे लेकिन महान भागवत हैं। इनमें बलि और प्रहलाद तो 12 महाजनों में महाजन है। तो बाहर की दृष्टि से किसी को पहचानना या उसका मूलांकन करना ठीक नहीं है, उसकी भक्ति से ही उसको देखना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु या आचार्य जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि नहीं सताती, अतएव श्री हरि भक्ति विलास के अनुसार आचार्य के तिरोधान होने पर उनके शरीर को भस्मीभूत नहीं किया जाता, क्योंकि वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। एक प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि भक्ति हरि भक्ति विलास में लिखा है, जो सन्यासी सदगुरु होते हैं जिन्होंने भगवान का मन से कर्म से वाणी से सेवा में लग गए हैं, उनके शरीर को अग्नि संस्कार नहीं करते, उनके शरीर को चिन्मय समझते हैं कि वो चेतन हो गया है, वो भगवान का पार्षद है, इसलिए उसको समाधि देते, उसको नमक आदि में समाधि देते हैं। तो अग्नि संस्कार क्यों करते हैं, क्योंकि मरने वाले के शरीर में भौतिक बुद्धि होती है तो आत्मा उस शरीर के ऊपर मंडलाती रहती है, तो आत्मा को उस शरीर से मुक्त करने के लिए अग्नि संस्कार करके वो पांच भूतों में चले जाए, ताकि आत्मा आगे जाके अपना सफर जो यात्रा है वो करे, इसलिए अग्नि संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है। लेकिन गुरुजन आचार्य सन्यासियों का अग्नि संस्कार नहीं होता, उनको समाधि दी जाती है क्योंकि उनके शरीर को चिन्ह में माना जाता है। तो यहां आज का कथा विराम पे आती है, और वीरभद्र या वीर चंद्र का आज आविर्भाव तिथि है, प्रकट्य दिवस है। ये नित्यानंद प्रभु के सुपात्र हैं। नित्यानंद, आपको आश्चर्य लगेगा, बलराम जी कृष्ण की लीला में कोई संतान नहीं, और वहां कृष्ण के 16,108 रानियां और हर रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री, और यहां चेतन महाप्रभु को कोई संतान नहीं, और नित्यानंद को यहां 2 विवाह हुए, जानवा और विशुद्धा से, और विशुद्धा का पुत्र है वीरचंद्र, विशुद्धा का पुत्र है वीरचंद्र और शिष्य है जानवा का, जानवा माता का शिष्य और विशुद्धा का पुत्र। और ये है कौन, बोला क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये विष्णु भाई के विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु कहां से प्रकट हुआ, संकर्षण से। बलराम का नित्यानंद कौन है, संकर्षण, तो संकर्षण से कौन प्रकट हुआ, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सबके हृदय में आप परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इनका स्थान कहां है, कलकत्ता के पास ही एयरपोर्ट से आगे जाएंगे तो खरदा नाम का एक जगह है, खरदा कलकत्ता के आउटस्कर्ट में है, और खरदा में नित्यानंद वाड़ी है, नित्यानंद का घर है, जहां नित्यानंद रहते थे जहनवा और वसुधा के साथ, जहां वीरचंद्र का जन्म हुआ, और वीरभद्र या वीरचंद्र इसको कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मैं ही तुम्हारे घर में प्रकट हूंगा असल में, क्योंकि विष्णु तत्व है। और जैसे ही वीरचंद्र प्रकट हुए, जानवा माता ने इनको दीक्षा दिया जैसे उनके हुए, इसके विवाह दो से कराया, नारायणी और श्रीमती ऐसे एक महात्मा ब्राह्मण की पत्नी, दो से इनका विवाह कराया, लेकिन इनको संतान फिर कोई नहीं है। 3 इनके शिष्य जिसको संतान की तरह समझते हैं, वो 3 इनके शिष्य रहे, और फिर ये सारे गौर मंडल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से मिले, उन सब जगह दर्शन किया, फिर वृंदावन आए, तब जीव गोस्वामी ने उनका स्वागत किया, और कविराज गोस्वामी ने उनको प्रार्थना की कि हम कृपा हमारे ऊपर कीजिए, हम के कवि ये लिखेंगे चैतन्य चरितमृत, कविराज गोस्वामी उनकी महिमा चेतना चरितमृत में गाई है। तो आज वीरचंद्र जी का प्रकट्य दिवस है, जो नित्यानंद के वंशज है, जिनके वंश से नित्यानंद का शाखा चलती है, ये चेतना चरितमृत में इसका वर्णन है। और आज बहुला अष्टमी है, 12 जो वन है वृंदावन में, उसमें एक वन है, उसका नाम ही है बहुला वन। ये बहुत बड़ा वन है, और बहुला वन अभी एक गांव बन गया, वहां बाती या वाती गांव बोलते हैं। ये वृंदावन और राधाकुंड के बीच में आता है, मथुरा से राधाकुंड जाते हैं तो उस रास्ते में आता है, तो बहुला वन अब गांव हो गया, जहां वन पहले था वहां गांव हो गया। लेकिन बहुला एक गांव गाय का नाम है। उस वन में जाएंगे तो जो मंदिर है उसमें एक गाय है, उसका नाम है बहुला। उस गाय को भगवान ने उसके वचन पालन के ऊपर दृढ़ होने के कारण आशीर्वाद दिया, वो दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सी सखी बनी। बहुला सखी भी है, बहुला भगवान की पटरानी जैसे भगवान की प्रिय सा भी है। तो बहुला गाय जो थी वो एकादशी का व्रत करती थी और द्वादशी को पारण करती थी, ये बहुला गाय का नेम था। ऐसी गाय भी, ऐसे पशु भी मिलते हैं। एक कुत्ता था जो ब्रजमंडल नहीं, जो 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 पूरे भारत में पदयात्रा है ना उसके साथ चलता था, एकादशी को अन्न नहीं खाता था, एकादशी को अन्न खाता नहीं, रोटी तो नहीं खाता था, और उसके साथ चलता था, कहीं नहीं जाता था, जो प्रसाद मिलता था वही खाता था। तो ऐसे बहुत से, तो वो द्वादशी के दिन उसने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया, उसको प्यास इतनी लगी, बच्चे को दूध नहीं पिलाया, पानी पीने चली गई, और पानी जहां पीने गई कोई एक बाघ आ गया। बाघ ने कहा गाय को खाऊंगा, झपट लिया। गाय ने कहा देखो मेरे ऊपर कृपा करो, मैंने बच्चे को अभी जन्म दिया है और बच्चे को दूध पिलाया नहीं है, और मेरा ये दूध बच्चे के लिए है, मैं उसको पिला के आती हूं, फिर तुम मेरे को खा लेना। तो बाघ ने भी उसके वचनों के ऊपर, शेर ने भी उसके वचनों के ऊपर विश्वास किया। मां वापस आई, अपने बच्चे को कहा बेटा आज जी भर के दूध पी लो, क्योंकि अब मैं वापस तुमको नहीं मिलूंगा। बोला क्यों? बोला मैं शेर को वचन दे के आई हूं। बोला मां देखो तुम मेरे को जन्म देने वाली माता हो, मैं बेटा हूं, मैं जाता हूं शेर के पास, तुम क्यों जाओगी? तो दोनों रो रहे थे, तो ग्वाला जो उनको देखने वाला था उसने कहा क्या बात है? तो गाय बोलती है मैं जाऊंगी शेर को वचन दे के आया हूं। बच्चा बोलता नहीं मैं इसका बेटा हूं, मैं कुर्बानी दूंगा, मैं बलिदान दूंगा। तो ग्वाला बोलता है दोनों आप मेरे आश्रित हो, मैं जाता हूं शेर के पास। तो तीनों के अंदर होड़ लग गई, तीनों चले गए शेर के पास। वो कहता है मुझे खाओ, वो कहता है मुझे खाओ, वो कहता है मुझे खाओ। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और बांसुरी बजाने लगे, और बांसुरी बजाने लगे। शेर ने कहा कि नहीं फिर मैं किसी को नहीं खाऊंगा। तो बोले कौन थे? तो कहते नारद ऋषि पिपलायन ऋषि के साथ एक बार स्वर्ग में गए, सब देवता उठ के खड़े हो गए। हाहा और हूहू नाम के दो गंधर्व थे, वो उठे नहीं। तो पिपलायन ने कहा अरे तुम लोग क्यों नहीं उठे दुष्ट? उन्होंने बोला आप ध्यान करके देखो, हमने आपका बड़ा आदर किया था, वो आए थे। पिपलायन ने ध्यान किया, बराबर आदर तो किया। फिर उसने कहा मुझसे तो अपराध हो गया, अरे इस धरती ने मैंने अपराध किया, इस धरती ने भी मुझे नहीं सावधान किया, तो धरती को भी अपराध में भाग लेना पड़ेगा, और नारद ने मुझे रोका नहीं इसलिए धरती गाय बनी। वैसे भी धरती विष्णु पत्नी है, वो दोबारा बहुला बनी और फिर उसके बाद भगवान की ही प्रियसी बनी विष्णु की। पिपलायन बना बछड़ा और नारद बना ग्वाला, और शेर कौन बना? ओ हाहा हाहा बना शेर। अब हाहा का उधार हो गया, और आज भी बहुला वन में गाय बहुला है, उसका बछड़ा है और बाघ है, और लोग उसकी पूजा करते हैं। उसके पास में एक संकर्षण कुंड है, और अंग्रेजों के सरकार के समय नहीं, मुसलमान के समय में उस गाय की जब पूजा करते थे लोग, घास आदि देते थे, तो मुसलमान जो था उसने बंद करा दिया कि मत दो, कैसी गाय की मूर्ति को थोड़ी पूजते हैं। तो वल्लभ आचार्य वहां भागवत कर रहे थे, उनका एक बैठक है वहां भागवत की, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको पूजा नहीं करने देते हैं। तो उन्होंने बोला बुलाओ जो यहाँ का जो सूबेदार है उसको बुलाओ। तो वो कांस्टेबल को बुलाया, उसने मना किया था। बोला क्यों मना करते हो? बोला गाय ये पत्थर की क्या खाएगी, अगर तुम इसको घास रखो ये खाएगी तो फिर हम पूजा करेंगे, हम भी मानेंगे। तो वल्लभ आचार्य ने कहा ठीक है घास लाओ। घास गाय के पीछे रखा और उसके देखते देखते गाय उठी, मुंह मोड़ा, उठ के घास खाया। घास खाने के बाद फिर वापस पत्थर की तरफ बैठ गई। तो उसने ये आंखों से देखा। तो उसके बाद पूजा अभी तक भी उस गाय की बहुला अष्टमी के दिन वहां होती है। तो इस वन में जाके दर्शन करने करना आज के दिन कुछ लोग भक्त गए होंगे, ये कथा भी करते हैं। दीनबंधु जी ने ब्रज दर्शन के पहले भाग में इस कथा को लिखा है कि बहुला कौन है और ये शेर कौन था। तो ये बहुला अष्टमी का तिथि का वार्ता है, कथा है। एक बहुला चौथ भी आती है, वो दूसरे महीने में आती है। वो माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। उसमें भी गाय ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर को वचन दिया था और भगवान श्री ने कृष्ण ने प्रकट करके कहा कि तुम्हारी पूजा होगी और जो तेरी पूजा करेगी उसके बच्चे का भी रक्षा होगी। तो ये बहुला अष्टमी आज के दिन को बहुला वन में जाके पूजा करने का, गाय को ध्यान करने का, इसका उधर जाके वो उसका दिन है। हरे कृष्ण। अब कोई प्रश्न है आपका, जिज्ञासा है? हाँ भाई। अब देखो हमारे पहले तो राधा कुंड का प्रकट्य दिवस आज के दिन को मानते थे, लेकिन कहते हैं कल हमको कहा किसी ने कहा कि गोपाल चंपू में के कौन से शास्त्र में चैत्र महीने में राधा कुंड के प्रकट्य का वर्णन आया है ऐसे। तो राधा कुंड का स्नान तो लोग रात किया होगा 12 बजे, ये तो पहले परंपरा चलती आ रही है। राधा कुंड का प्रकट्य भी आज के दिन पहले मानते थे हम, मतलब ऐसे ही मनाते रहे, अभी मना रहे हैं, लेकिन रात कल मेरे को बताया गया कि हम जीवा गोस्वामी के शास्त्रों से लगता है कि राधा कुंड का प्रकट्य जो है वो चैत्र मास में हुआ है, अब नहीं है तो इसलिए हम उसका उत्सव नहीं मनाते हैं। वैसे कल्प भेद से भी ऐसे होता है। कल्प भेद का मतलब किसी कल्प में चैत्र में हुआ हो, किसी कल्प में इस दिन पे हो, तो दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। राधा कुंड का प्रकट्य जो वृषभासुर एक बैल के रूप में असुर आया था और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग में रास विहार कर रहे थे, तो उसने उसके अंदर विघ्न डाला, तो भगवान ने उस जो अर्ष्टासुर भी कहते हैं, वृषभासुर भी कहते हैं, जो धर्म का प्रतीक है, उसको घुमा के मारा और जैसे वो मर गया, गोपियों ने कहा हमको हाथ मत लगाना, तुमने एक बैल को मारा है, गाय के पुत्र को मारा है। बोला देखा नहीं इतना बड़ा असुर था? बोला असुर था लेकिन था तो धर्म का प्रतीक, जाओ तीर्थों में स्नान करके आओ। भगवान ने कहा तीर्थों में मैं क्यों जाऊं, तीर्थ सबको यहां बुला लेता हूं। एक बार नंद बाबा ने कहा घर में कि मिठाइयां बनाओ, कचोरियां बनाओ, पक्का सारा भोजन बनाओ, क्या करना है? बोला चलेंगे तीर्थ का दर्शन करने। कौन से? बोला प्रयागराज, सब तीर्थों का राजा है। कृष्ण ने घरे पूछा माँ, अपनी माँ यशोदा से, ये क्या बन रहा है? बोला आपके पिताजी कहते हैं कि हम चलेंगे प्रयागराज का दर्शन करने। अब कृष्ण हंसने लगे, अच्छा माँ। और दूसरे दिन सुबह नंद बाबा नहाने गए पावन सरोवर में, तो दूर से देखते हैं बड़ा प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश को देखा, नजदीक जाके देखा तो एक व्यक्ति उतरा है, स्नान कर रहा है। नंद बाबा स्नान कर लिया, उस पूछा कौन आप महात्मा है? बोला मैं प्रयागराज हूँ, पापी लोग आते हैं मुझ में स्नान करते हैं, मैं रोज आता हूँ पावन सरोवर में स्नान करता हूँ। नंद बाबा ने ये जब देखा तो वापस जाके यशोदा को कहा ये प्रसाद बांट दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये प्रयागराज भी यहाँ स्नान करने आता है तो हम प्रयागराज क्यों जाएंगे। तो ये तो भगवान बचपन में ही सारे तीर्थों को तो ब्रज में ही विराजमान कर दिया है। प्रयागराज, एक भगवान को शिकायत लगाई कि मैं राज हूं सबको बुलाता हूं, ये वृंदावन नहीं आता है। अरे भगवान ने बोला तू तीर्थों के राजा है, मेरे घर के राजा है क्या? वृंदावन तो मेरा घर है, तू इसका राजा तो नहीं है, तू अपने राजा तीर्थों का बना रहा है, मेरे घर का राजा नहीं है, तू अपनी जगह पे रहो, वृंदावन तो मेरा निज धाम है। हाँ ये तो हम हंसने की बात पहले बताते हैं, भगवान का निज धाम है वृंदावन। वो एक वृंदावन का भक्त चला गया था अमेरिका में, तो वहां के एक पादरी के घर में गया तो उसके 3 फोन रखे हुए थे, लाल हरा पीला। पूछा काहे के लिए 3 फोन है? बोला एक तो इस देश में बात करने के लिए, एक विदेश में बात करने के लिए, एक भगवान से बात करने के लिए। तो इसने वो भगवान से बात करने वाला फोन उठाया ब्रजवासी ने, और कृष्ण गोपाल कहाँ हो, मैया कहाँ है, गैया कहाँ है, ऐसे एक घंटा बात किया। तो बिल आया $100। तो वो पादरी ने कहा मैं भरता हूं, तुम चिंता मत करो, मेहमान हो हमारा, भर लिया। कुछ समय के बाद पादरी दिल्ली आया, उसके कहा मेरा मित्र है वृंदावन, वो चला गया वृंदावन। वो भी महा जो साधु था उसने 3 फोन रखे हुए थे, बोला ये का है, बोले जैसे आपके वैसे, ये देश में, ये प्रदेश में, ये भगवान से। उसने बोला $1,100 इसके ऊपर खर्च किया, मैं भी भगवान को फोन करता हूँ, कैसे हो जैसस, कैसे हो मेरी, कैसे हो, ठीक है सब ठीक है, 1 घंटा बात किया, 2 रुपये बिल आया। बोला क्यों, बोला यहाँ लोकल काल है, भगवान यहीं रहते हैं। ये वृंदावन तो लोकल काल में आता है ये तो यह सारा तीर्थ वीर्थ सब इधर ही है, सब लोकल काल में आता है। तो भगवान ने सब तीर्थों का आवाहन किया, भगवान ने फिर अपनी ही बांसुरी से थोड़ा सा खड्डा बनाया, और बाद में ब्रजनाभ ने उसको कुंड बनाया, वो हो गया श्याम कुंड। अब भगवान ने सब तीर्थों को कहा, राधा रानी को प्रार्थना करो कि हमारे स्नान के, राधा रानी तुम्हारा क्यों स्नान करेंगे, तुम्हारे जल में स्नान नहीं करेंगे, हम सब गोपियां मानसी गंगा से पानी भर के लाएंगी। लाइन में खड़ी हो गई और एक मटका दूसरे को दिया, और फिर अपनी चूड़ी से राधा रानी से कंकन का कुंड बनाया और सब पानी उसमें लाए। पर सब तीर्थों ने बहुत प्रार्थना किया राधा रानी को, हमारे को स्वीकार करो, ठीक है श्याम कुंड से एक रास्ता बनाओ, तुम्हारा पानी यहाँ आएगा, मैं रोज श्याम कुंड में स्नान करूंगी। और कृष्ण ने कहा राधा कुंड राधा के समान ही मेरे लिए है, और रूप गोस्वामी ने कहा जितनी राधा कृष्ण को प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है, राधा कुंड सारे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम स्थान है, वहां वो जाए उसमें स्नान वो करे जिसको प्राप्ति दशा प्राप्त हो गई है, इसका मतलब अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया है वो उधर जा सकता है। पहले तो श्रवण दशा होती है सुनना, फिर सुमरण दशा होती है, फिर सुमरण करना, फिर आपन दशा होती है, और उसके बाद प्राव जब स्वरूप की स्थिति हो तब जाके वहां स्नान करने का अधिकार है। ऐसे स्नान करने से तो कई बार स्नान करके आए, कोई प्रेम हुआ क्या किसी को, कितने स्नान करके आए हैं, माथा गीला करके आए और तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे स्नान करने के लिए स्थिति हो तो स्नान कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ जी वैसे जनरली सन्यासियों का करते नहीं है, लेकिन गुरुजन किसी को कहते हैं कि नहीं अग्नि संस्कार कर दो तो वो कर लेते हैं, ये तो फिर व्यक्ति के भेद है। लेकिन सिद्धांत ये है जितने हमारे सन्यासी है वैसे उनका सबका जो है वो समाधि देते हैं। अब कोई क्या कारण होगा वो तो महाराज जान सकते हैं, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, जनरली वैसे होता नहीं है परंपराओं में, मतलब पुराने से होता नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुला वन में कोई उधर क्यों बनाते हैं पता नहीं, बहुला अष्टमी करके इसको बहुला गाय की स्मृति में बनाते हैं बस लगता है ऐसे, मैं भी सोच रहा था लेकिन मनाते अष्टमी के दिन है।